ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी।
ये तीसरा स्कंद है, सातवां स्कंद चाहिए इसमें होगा।
कोई है इधर देखता हूँ। अच्छा
इधर तीसरा स्कंद दी है जब सप्तम चल रहा। सप्तम देखो इधर।
तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत इसकी वॉल्यूम बढ़ाओ। तो स्कंद सात अध्याय एक, अध्याय का नाम है समदर्शी भगवान और श्लोक संख्या दो। आप लोग दोहराएंगे, न ही अस्य अर्थ सुरगणै साक्षात् निःश्रेयस आत्मन नैव असुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेग च अगुणस्य हि। न हि अस्यार्थ सुरगणै, न हि अस्यार्थ सुरगणै साक्षा निःश्रेयसात्मनः, साक्षा निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो, नैवासुरेभ्यो विद्वेषो न द्वेग चा गुणस्य हि, न द्वेग चा गुणस्य हि। शब्दार्थ न नहीं ही निश्चय ही अस्य उनके अर्थ लाभहित सुरगणै देवताओं के साथ साक्षात स्वयं निःश्रेयस सर्वोच्च वरदान का आत्मनः जिसका स्वभाव न एव निश्चय ही नहीं असुरेभ्य असुरों के लिए विद्वेषः ईर्षा द्वेष न उद्वेग भय नहीं च्या तथा अगुणस्य भौतिक गुणों से रहित ही निश्चय ही। अनुवाद तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, भगवान विष्णु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा, इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा। जब भगवान दिव्य है तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा, और उनसे ईर्ष्या कैसी,
थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दो,
वॉल्यूम कम है क्या?
अच्छा थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दो, और ये आपका
तात्पर्य, नो प्रॉब्लम। हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण रखना आध्यात्मिक या दिव्य है। सॉरी फिर से बोलेंगे हम, हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो भौतिक है वह भौतिक गुणा भौतिक गुणों द्वारा संदूषित रहता है, किंतु जो आध्यात्मिक या दिव्य है उसे ये गुण छू तक नहीं पाते। कृष्ण चाहे भौतिक जगत में रहें या आध्यात्मिक जगत में, वे रहते हैं परम ही। जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो वह दृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति के कारण होती है, अन्यथा उनके शत्रु उनके द्वारा बध किए जाने पर किस तरह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है धीरे धीरे भगवान के गुण अर्जित कर लेता है। जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति करता है वह भौतिक गुणों के द्वंद द्वेष से उतना ही कम प्रभावित होता है। अतः परमेश्वर निश्चित रूप से इन गुणों से मुक्त होते हैं। उनकी शत्रुता तथा मित्रता भौतिक शक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए बाह्य गुण हैं। भगवान तो नित्य दिव्य हैं, वे परम निरपेक्ष हैं, चाहे वे मारे या बर्दे। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। हम अपने शत्रुओं से भयभीत रहते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में हमें सदैव सहायता की आवश्यकता बनी रहती है, किंतु भगवान को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्माराम हैं। भगवद गीता 9:26 में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तियो परत असनामी प्रिय आत्मनः। यदि कोई भक्त मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वे भक्त की भेंट पर आश्रित हैं? वास्तव में वे आश्रित नहीं हैं, किंतु वे अपने भक्त पर आश्रित रहना पसंद करते हैं, यह उनकी कृपा है। इसी प्रकार वे असुरों से डरते नहीं, अतएव भगवान द्वारा पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनशलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलम श्रीगुरून वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नम अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीन तारणम्। भूतैर्महदेवी यः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान षोडशात्मकं सोऽलङ्कर शिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
इसका थोड़ा बोल।
हरी हरी ठीक है। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहां पर उपस्थित जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं उन सभी का हम इस प्रातःकालीन भगवत भाग श्रीमद भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो ये जो सातवें स्कंद का प्रारंभ हो रहा है महाराज परीक्षित के प्रश्नों से, इसका मतलब है छठवें स्कंद में कुछ ऐसी बात हुई है जिससे महाराज परीक्षित के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुआ। वो शंका कैसे उत्पन्न हुआ कोई बताएंगे आप लोगों में से? परीक्षित महाराज प्रश्न किए तो शंका का कारण क्या है? हाँ, शंका ये हुई कि द्वितीय के जो है भगवान ने दो पुत्रों का वध कर दिया। हिरणाक्ष का वध कर दिया और हिरणाकश्यप का वध कर दिया, ठीक है ना? तो किसी के जो है दो पुत्र जब भगवत प्राप्ति करते हैं तो कष्ट तो होता ही है, हालांकि भगवती धाम ही क्यों ना जाए, लेकिन उनका साथ छोड़ना या उनका सानिध्य से दूर होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए द्विती को बड़ा वो आया तो उन्होंने जो है पुंसवन व्रत किया जो एक साल तक चलेगा, और उसमें स्पेशली एक ऐसे पुत्र की मांग की गई कश्यप ऋषि से जो इंद्र का वध करे, क्योंकि भगवान ने वध क्यों किया? क्योंकि इंद्र के कहने से किया, अर्थात इंद्र का पक्ष लिया और जो है उनका जो द्विती के जो पुत्र थे उनको जो है विरोधी समझा, तो इसलिए द्विती ने इंद्र के ऊपर गुस्सा उतारा और उसने सोचा कि मैं अब एक ऐसा पुत्र जन्मूंगी या जन्म दूंगी जो इंद्र का वध कर दे, इसलिए उन्होंने पुंसवन व्रत किया। लेकिन वो व्रत था वो वैष्णव विदिते था, कर्मकांड की विदिते नहीं था। ये बहुत जो है समझने, हम कभी कभी व्रत करते हैं तो कर्मकांड को ज्यादा उसमें है वो करते हैं, लेकिन यहां समझना चाहिए कि व्रत वो ही था लेकिन इसको किए थे वैष्णव विदिते, इसलिए जो उनके जो गर्भ में जो पुत्र हुआ वो भक्ति भावना से इतना प्रतापी था इतना तेजस्वी हुआ कि इंद्र ने अपने वज्र से उसके पहले एक टुकड़ा किया, मतलब 60 टुकड़े किए उसके 60 टुकड़े किए, लेकिन सोच लो मरा नहीं। जब मरा नहीं तो इंद्र को और भय पैदा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये जिंदे हो गए तब तो जो है मेरी हालत खराब कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने फिर एक एक पीस के साथ साथ फिर टुकड़े किए। तो आप कितने हो गए समझ सकते हैं? 49 हो गए ये, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं था। तब जो है उन मरुतों ने इंद्र को कहा तो हमें क्यों मानना चाहते हो, हमारा दोष क्या है। तब जो है इंद्र ने कहा कि देखो आगे चल करके तुम मेरे शत्रु बनोगे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम शत्रु भला क्यों बनेंगे, हम तो आके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, हम भला आपसे शत्रुता क्यों करेंगे। इसलिए आप हमें मत मारिए, हम कभी भी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, हम आपके हसली मतलब सुहृद बनकर रहेंगे, मित्र बनकर के रहेंगे। तो इंद्र ने उनको मारा नहीं। तो इस प्रकार जो है दिति ने 49 ओ और एक इंद्र बच्चों को जन्म दिया। तो इससे दिति का जो है गुस्सा था वो थोड़ा कम तो हुआ, वो तो शांत हो गई यहां पर, लेकिन परीक्षित महाराज का डाउट बढ़ गया। और ये डाउट इसलिए बढ़ गया तो उन्होंने जो है प्रश्न कर दिया कि भगवान तो समदर्शी हैं, तो फिर भगवान किसी का पक्ष क्यों लेते, उनको लेना देना क्या किसी से भाई, है कि नहीं, सभी तो उन्हीं की संतान है। क्या जो है पिता का कोई पुत्र मान लीजिए गलत रास्ते पे चल रहा है तो क्या पता उसको मार देता है क्या, नहीं, समझाता है और अंत तक समझाने का प्रयास करता है। हालांकि वो पुत्र जो है कितना भी फिर चलाया, लेकिन पिता कभी भी नहीं चाहता कि मेरे पुत्र का मर्डर हो जाए या कोई दूसरा मार दे। इसलिए जो है परीक्षित महाराज ने भगवान से प्रश्न कर दिया। अब संदेह होता है कि परीक्षित को क्यों शंका, भाई परीक्षित तो भक्त है, तो परीक्षित महाराज को क्यों शंका हुई। हाँ, क्योंकि भविष्य में लोग भगवान के ऊपर उंगली न उठाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भगवान को तो ऐसा वो नहीं करना चाहिए, द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है प्रश्न उठा दिया। क्योंकि भगवान समदर्शी हैं, इसलिए समदर्शिता ही स्थापित समाज में होना चाहिए, संसार में होना चाहिए, पक्षपात जो है ऐसा जो है समाज में स्थापित नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रश्न को जो है यहां पर आज बता रहे हैं। तो कल हम प्रश्न सुने थे श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज के लिए श्री राजोवाच। समह प्रिय सुहृत भूतान भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम देत्यान अवधि द्विसमोत यथा। तो प्रश्न कर रहे हैं कि सम प्रिय सुहृन भूतान भगवान स्वयं, भगवान तो सभी के सुहृत हैं, प्रिय हैं समस्त जीवात्माओं के, फिर भगवान इंद्र का पक्ष क्यों लेते हैं और दैत्यों का वध क्यों करते हैं। ये जो है कल का वो था, और आज उसी बात को लेकर के थोड़ा सा और अच्छी तरीका से समझा रहे हैं। बोलते हैं कि ही अस्यार्थ सुरगणई साक्षात निश्रेष आत्मन न ही अस्य अर्थ सुरगण। भाई ऐसा कौन सा काम भगवान का फेल हो रहा है या फंसा हुआ है या किस चीज की भगवान को जरूरत है जिसके द्वारा देवता लोग उसको पूरा करते हो, है कि नहीं। हमें इस संसार में जरूरत रहती है, इसलिए हम उनके साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, किसी के साथ पक्षपात करते हैं, एक साथ मित्रता करते हैं, दूसरे के साथ में विद्वेष करते हैं, क्योंकि हमें सहायता की जरूरत है, हमें बहुत कुछ सहायता की समाज में रह रहे हैं। तो लेकिन भला भगवान के बारे में जब प्रश्न किया जाता है तो ऐसा कौन सा कार्य भाई जो देवता भगवान का कार्य कर सके। क्यों, क्योंकि साक्षात निश्रेयस आत्मन, भगवान साक्षात निश्रेयस अर्थात भगवान सारे मंगलों के भी मंगलमय है, और भगवान जो है सारे वरदानों को भी वरदान देने वाले हैं, अर्थात भगवान हर किसी की समस्या को पूर्ण करने वाले हैं, वो पूर्ण हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां आत्मन, आत्मन मतलब आत्मा राम है, तो जो आत्मा राम है भाई उसको फिर किस चीज की जरूरत है, कि नहीं, सोचने वाली बात है। तो भगवान तो परम आनंद में है, मंगलमय है, तो फिर उनको किस बात का कष्ट हो रहा है, तो इसलिए देवताओं को पक्ष ले रहे हैं। और दूसरी बात बता रहे कि नैवा सुरेभ्यो विद्वेषो नैव न एव असुरेभ्यो विद्वेषः न उद्वेग च अगुणस्य ही। तो भगवान अगुणस्य है क्योंकि प्रकृति के किसी भी गुण के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते हैं। भाई इस संसार के अंदर ईर्षा द्वेष इसलिए है क्योंकि हम सब प्रकृति के तीन गुणों के अंदर ही काम कर रहे हैं। जब तक हम प्रकृति के तीन गुणों में रहेंगे एक कभी भी ईर्षा द्वेष खत्म नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, चाहे हम किसी भी लोक में चले जाएं, स्वर्ग लोक आदि में भी भ्रमण करें तो वहां भी ये समस्या भरी पड़ी है। अंतर इतना है, कुछ कम है लेकिन कहीं दोष ज्यादा है, और कहीं समस्या कुछ है तो कहीं दूसरी समस्या, ये समस्या रहेगी जब तक हम इन तीन मूड हैं, जो तीन गुण हैं उसी मूड में हम जो है कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ईर्षा द्वेष रहेगा ही रहेगा। इसलिए यहां बताते तो जो है नैव एव असुरेभ्य विद्वेषो न च उद्वेग अगुणस्य। तो भगवान अगुणस्य होकर के, भगवान तो प्रकृति के गुणों से तीन गुणों से बिल्कुल परे है, गुणातीत है, तो फिर इस संसार के अंदर भगवान को मान लीजिए कोई गाली भी दे रहा हो, कोई भगवान को जो है क्या नाम निंदा कर रहा हो, तो कौन सा भगवान के ऊपर उसको प्रभाव पड़ता है, है कि नहीं? जैसे कोई पागल व्यक्ति है, बिल्कुल पागल व्यक्ति है, अब उसके सामने उसकी स्थिति करो तो उसको क्या मालूम चलता है, या गाली दो तो उसको क्या मालूम चलता है। बच्चा है उसके सामने बहुत बड़ी आप स्तुति करो, अरे तुम कितने महान हो, आपकी महानता को देख करके तो जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग परास्त हो जाते हैं, तो उसको क्या हानि है, या गाली दो छोटे से नवजात शिशु को तो भी उसको कुछ मालूम नहीं चलता क्योंकि अबोध है। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका भजन करके हरिदास ठाकुर को 24 बाजारों में पीटा, 22 बाजारों में, 22 बाजार में उसकी पिटाई की, अब सोच लो भाई कोई किसी को एक चांटा भी मार देता है तो 100 गाली फटफट करके सुना देता है, सुनाता है कि नहीं सुनाता है, और साथ साथ में बोल देता है अब तू तैयार हो जा मैं बताऊंगा तुझे। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों से पीटा, जल्लाद भी थक गए, लेकिन एक शब्द भी हरिदास ठाकुर ने ऐसा नहीं बोला कि उनको कष्ट हो जल्लादों को, और उनकी आंखों से आंसू तब निकल गए जब जल्लादों ने हाथ जोड़ करके कहा हरिदास या तुम नहीं मरोगे तो हमारी जिंदगी जो है फिर खतरे में आ जाएगी, तुम नहीं मरोगे तो हमें मरना पड़ेगा, मरना तो एक पड़ेगा ही किसी न किसी को, अच्छा है हरिदास तुम ही मर जाओ तो कम से कम हमारी जिंदगी बची रहेगी। सोचो हरिदास की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, मैं मरूंगा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर सांस खींच गए और फिर उसके जो है सांस खींच गए सबको दिखाए, डॉक्टर वॉक्टर बुला करके बोला हाँ ये तो बिल्कुल डेड, उठा के जो है गंगा जी में फेंक दिया। हालांकि बाद में वो जीवित होके आ गए, वो एक अलग बात रही। तो कहने का आशय है कि भगवान के भक्त भी भगवान का भजन करके गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और इस संसार के राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर भगवान जो है क्यों असुरों से फिर जो है राग द्वेष करेंगे, उनको क्या लेने देना असुरों से, भाई समझने वाली बात है कि नहीं। भगवान असुरों की जो है स्तुति से या असुरों की गाली से क्या भगवान को कुछ ऐसा होगा? तो आप सभी जानते हैं जब असुर गाली देते हैं तो स्तुति होकर के लगती है उनको, मालूम ना, क्योंकि सरस्वती जो है जब कोई असुर गाली देता है तो सरस्वती उस गाली को किस में ट्रांसफर करती है, स्तुति में बदल देती है। तो भगवान उनके गाली से प्रसन्न हो जाते हैं, बोला क्या स्तुति की है मेरी। तो इसलिए ये जो है यहां पर आज का उसी बात को कल की बात को थोड़ा डिटेल किया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बाद में जो है देखते हैं। तो यहां पर ये जो बात हमें देखनी पड़ेगी जो है आचार्य गण बोल रहे हैं इसमें भगवान निश्रेयस है अर्थात हम हर मंगलों के भी मंगल में है, है? और जिसको बोल सकते हर आनंद के वो ही स्रोत है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं परमानंद एवं आत्मस्वरूप यस्य तस्य न ही सुखम स्वरूपस्य कश्चित अन्य सुखम साधयेत इति भाव। अर्थात भगवान के बोले भगवान का कैसा है आत्मस्वरूप परमानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है परमानंद स्वरूप है। कैसा स्वरूप है भगवान परमानंद स्वरूप है। बोलो हरे कृष्णा 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 तो भगवान परमानंद स्वरूप होने के कारण आनंद स्वरूप होने के कारण इस संसार के अंदर जो भी सुख देख रहे हैं जो भी आनंद देख रहे हैं जो भी टेस्ट मिला है हमें वो सब किससे मिला है भगवान से मिला है। और वो भगवान के भगवान ने गीता के जो है 11वें अध्याय में कहा था अथवा नहीं 10वें अध्याय में कहा था अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थित जगत। अर्जुन तुम ये बात इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि मैंने जो कुछ भी आपको अपनी विभूतियों के बारे में बताया ये तो ट्रेलर दिया है मैंने अभी फिल्म तो बहुत बाकी है और वो भी मैं नहीं बता सकता वो भी मैंने पूरा कुछ बताया नहीं क्योंकि इस संसार के अंदर जो कुछ भी है एक अंशेन अर्थात ऐसे समझ सकते हैं जो आनंद भगवान में समुद्र की तरह है उस समुद्र की एक बूंद की झलक इस संसार के अंदर है त्रिलोकी में। संसार मतलब 14 लोकों में भगवान के एक आनंद की झलक है सोचो। तो ऐसा इस संसार के अंदर कौन सा आनंद इंद्र या देवता लोग दे देते हैं जिससे भगवान उनका पक्ष प्रसन्न होकर के पक्षपात लेंगे उनको। यहां कहने का आशय बात बता रहे हैं बोल रहे हैं कश्चित अन्य सुखम साधयेत न ही सुखम स्वरूपस्य कश्चित अन्य सुखम साधयेत इति भाव। अर्थात ऐसा कौन सा सुख है जो भगवान के जो है और सुख पहुंचाता और अधिक उनको जो है सुख देख करके सुख पहुंचाता है। कोई भी संसार में ऐसा सुख नहीं है अर्थात भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप है इसलिए उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बात यहां पर बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान निःश्रेयस श्रेयस और प्रेयस आप ये दो शब्द सुने होंगे। तो प्रेयस में तो जो है क्या है तो प्रेयस बोलते हैं जो तत् अग्रे अमृतोपम परिणामे विषय वह जो प्रेयस सुख है इस संसार में जिस सुख के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है हर व्यक्ति कौन सा सुख चाहता है तत् अग्रे अमृतोपम बस फटफट हमें इमेडिएटली हमने किया कि नहीं हमें तुरंत उसका फल मिलना चाहिए अच्छा बुरा नहीं okay? उसका जो है आनंद मिलना चाहिए। भजन करो मति भगवान आए यहीं बैठे बैठे खिलाएं और बाद में भगवत धाम अपने धाम ले जाए इस सुख की सब कामना करते हैं ठीक है ना। संसार में हर व्यक्ति प्रिय सुख तुरंत सुख चाहते हैं है कि नहीं है हर व्यक्ति तुरंत सुख चाहता है। थोड़ा कुछ बता दो भाई प्रभु ऐसी सेवा करो तब जो है आपको तो वो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन श्रेयस सुख जो है तत् अग्रे विषयवा लेकिन परिणाम है अमृतोपम। लेकिन जो असली जो सुख है वो शुरू में आपको कष्ट देगा ठीक है लेकिन परिणाम अमृतोपम परिणाम इतना अच्छा होगा जिसकी हम अमृत से तुलना की गई है, मतलब इतना सुस्वादु इतना आनंदमय होगा कि कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन शुरू में कष्ट उठाना पड़ेगा। अब जैसे सर्दी आ रही है, अब सर्दी में जगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, होता है कि नहीं होता है? और जग करके कोई नहा लिया तब तो फिर कहना ही क्या है, वो तो फिर जो है आप सोच सकते हैं यज्ञ करने का जैसे मतलब उसके लायक हो गया, अब नहा लिया अब तुम्हें और नहा धो करके जो है रूम से निकल करके मंगल आरती में आके खड़ा हो गया, चाहे सोता ही खड़ा हो गया, तब तो उसने सब कुछ कर लिया फिर है कि नहीं है। तो ये जो जो है साधना भजन हमारी जो साधना भक्ति है, इसके अंदर जो साधन है ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं। माला जप करना अच्छा लगता है किसी को? वास्तव में जितना कष्ट माला जप करने में लगता है ना, उतना कष्ट और किसी चीज में नहीं लगता है कि नहीं। कम से कम सत्संग में तो आकर के पीछे बैठ करके या इधर उधर बैठ करके सो जाते, सो लेते, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन माला जप में तो हमें करना है, तो उसमें जो है माला, अब गुरुजी ने बोला था कि 16 माला जप करते, हाँ गुरुजी 16 माला जप करेंगे पक्का, तो गुरुजी ने बोल दिया था वो तो करना ही है। और उसमें जो है हमारी जो स्थिति होती है, सामने वाला देख करके भी उसको बेचारे को द्रवित हो जाते कि बेचारा कितना कष्ट में है इस समय, कभी उठेगा कभी बैठेगा कभी एड लेगा कभी जो है क्या करेगा है? पूरा तो आप सोच सकते हैं। लेकिन इतना जान लो कि भगवान परम मंगल में है, मंगल हा मंगला नाम, और भगवान हतारी गत दायकम। भगवान क्या है? हतारी गत दायकम, ये दो चीज समझ लेना चाहिए। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, ठीक है ना, लेकिन ध्रुव महाराज ने तपस्या करके इमेडिएटली उन्होंने राज्य प्रदान कर दिया भगवान ने इस भौतिक जगत का। जब तक इस संसार में रहोगे जो है तुम इस संसार में, तब तक राज्य करो अपने पिताजी का, और जब इस संसार को छोड़ोगे तो उनको परम गति प्रदान कर दी, उनको एक स्पेशल लोक बना करके दे दिया, ध्रुव लोक, जो बैकुंठ लोक का एक हिस्सा है। बैकुंठ लोक और उसमें कोई भी अंतर नहीं है, भगवान ने स्पेशल उसको एक प्लानेट दे दिया बैकुंठ लोक का, सोच लो। तो इसको बोलते हैं भगवान निःश्रेयस, मतलब सारे वरदानों का, प्रभुपाद जी ने लिखा है निःश्रेयक मतलब सर्वोच्च वरदान का, जो सब कुछ देने वाले हैं तो फिर उनको किस बात की जरूरत है? भाई पूतना आई भगवान को मानने के लिए, ठीक है ना। तो भगवान यहां पर जो रहे हतारी गत दायक, भगवान किसी से द्वेष भी करते हैं तो ये समझना चाहिए उसका पूर्ण मंगल इसमें हो रहा है। और जब उस किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तब तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा हतारी गत गतिदायक, हतारी गतदायकम, अर्थात वो शत्रुओं को या असुरों को मान लीजिए मारते भी हैं, क्योंकि सामने हमें दिखाई दे रहा वो ही हम बोलेंगे। तो भगवान कभी कभी एक पक्ष लेकर के किसी को मारते भी हैं, तो जैसे महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोगों को मरवाया। लेकिन इतना जान लेना चाहिए कि महाभारत के युद्ध में जो भी लोग मरे, हालांकि भगवान ने किसी को नहीं मारा, अर्जुन ने मारा या अन्य अन्य जिन्होंने जो जिसको मारा उन सभी को जो है परम गति प्राप्त हो गए। ये भगवान के कृपा का वहां उपस्थित रहने का ही आशीर्वाद है। और भगवान जिसको मारते हैं तब तो फिर कहना है क्या, ये बात समझ रहे ना भाई। लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे भाई आप सोचो भगवान असुरों के जैसे कभी सूर्य सूर्य को मतलब जैसे सूर्य में जो प्रकाश है लबालब भरा हुआ है, ठीक है ना, सूर्य कभी भी किसी को यह नहीं कहेगा भाई तुम, सूर्य जो अंधकार नहीं देता, वो चाहे कि किसी को मैं अंधकार दे दूं तो सूर्य किसी को अंधकार दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें वो चीज है ही नहीं। तो ठीक ऐसे ही भगवान किसी का अहित करना चाहे तो भगवान कितना भी ताकत लगा करके अहित करें लेकिन उसका उतना ही मंगल होगा। ये भगवान की खासियत, इसलिए उनको निःश्रेयस कहा गया है। निःश्रेयस का मतलब होता है हर वरदानों के भगवान स्रोत हैं, हर मंगलों के भी स्रोत हैं, हर आनंद के वो हैं, वहां से सब कुछ निकलता है। तो इसलिए पूतना को भगवान ने मारा तो मार करके जो है उनको अपनी मां बना दी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को यहां जो है बोलना पड़ा कि पूतना लोक बालाग्नी। पूतना का काम क्या था कि पहले तो उसने ब्रज में कई सारे बच्चों को मारा और रक्षासी राक्षसी रुधिर आसन रुधिरासन, आसन मतलब भक्षखाना। वो क्या खाती थी? बच्चों का मांस खाती थी, मतलब उनका रुधिर पीती थी, ब्लड पीती थी, खून पीती थी, उनका खून पी जाती थी। लेकिन जिंघा से आपी हरे स्तनम दत्वा आप सदगति। तो ओ ये पूतना जब भगवान को मारने के लिए आई, अपने स्तनों में हलाहल जहर लगा करके आई थी, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन हरे स्तनम जिंघा से आपी दत्वा आप सदगति। हालांकि पूतना मारने के लिए आई भगवान को अपने स्तनों के अंदर दूध लगा करके, लेकिन भगवान ने उसको जो है अपनी मां मतलब धाय मां बना करके उनको परम गति प्रदान कर देते हैं। तो भगवान पूतना को जब परम गति दे सकते हैं, अपनी मां बना सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी उनका कुछ सेवा कर देता है, कुछ नाम जप कर लेता है, कहीं उनका कुछ काम आ जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उनको भगवान फिर क्या गति देंगे। ये बात जो है यहां पर इस बात को बताना चाह रहे हैं आचार्य गण के भगवान निश्रेय हैं, अर्थात सारे श्रेयों के वो श्रेय हैं, परम मंगलमय मंगलम मंगलालम, हर किसी का मंगल करने वाले हैं। तो इसलिए वो भगवान जो है क्या है, किसी का अहित भी करें, किसी को जो है कुछ कष्ट भी दें, तो भी उनके लिए पूर्ण मंगल होता है। इसलिए असुरों को मारते हैं तो असुरों को पहले सदगति दे देते हैं, तुरंत उनको गति। भक्त तो जो है फिर और भजन करेगा तब जाकर के कभी मरेगा, फिर जाके भगवत धाम जाएगा, लेकिन असुरों को तो भगवान इमीडिएटली मार करके तुरंत भेज देते हैं, जाओ तुम्हारी सीट खाली थी अब जाकर के रहो उधर। प्रश्न उठता है कि भगवान फिर इंद्र का क्यों जो है प्रोटेक्शन करते हैं, क्यों सहायता करते हैं, देवताओं की सहायता तो करते हैं भगवान भक्तों की। तो भगवान ने कहा क्या, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मेरा जो जैसा भाव लेकर के मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार उनके साथ में व्यवहार करता हूं। ये बात समझ रहे ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा ही भजामि हम, जैसा व्यवहार लेकर के मेरे सामने आता है मैं उसी के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता हूं। तो इसलिए मान लीजिए कोई भगवान के साथ में शत्रुता का भाव लेकर के आया हो, असुर क्या करते हैं भगवान से विद्वेष करते हैं, भगवान से शत्रुता रखते हैं, तो भगवान भी क्या करे, भगवान उनके साथ शत्रुता रखेंगे। ठीक है ना, भगवान की एक खासियत है। दूसरी बात है कि भगवान जो है इस जगत के पालक, सृष्टि स्थिति और सहार, सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी के हाथ में दिया है, सहार का कार्य शिव जी के हाथ में दिया है, लेकिन पोषण का काम किसके हाथ में दिया है, ब्रह्मा अपने हाथ में लिया है उन्होंने। तो जब इस संसार के अंदर कोई जो है विघ्न उत्पन्न करता है, बाधा डालता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं धर्म के अनुसार हर व्यक्ति हर वर्ण हर आश्रम अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना निर्वाह करे, नो प्रॉब्लम, कोई किसी को कष्ट न दे। तो जब व्यक्ति जो है धर्म के नियमों को कोई तोड़ता है तो भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस संसार में किसके लिए अवतरित होता हूं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थात। तो भगवान जो है वास्तविकता रूप से देखा जाए तो इस संसार में हर व्यक्ति का अधिकार दिया है, तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है भगवान केवल उनके भाव के अनुसार उनका व्यवहार करते हैं। है, जैसे भगवान ने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति तदहम भक्ति अप्रथ असनामी प्रियात्मना। भगवान जो है उसके भाव के अनुसार ग्रहण करते हैं। कोई पत्र भी देता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, पुष्प देता है, फल देता है, जल देता है, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन दिए तो उनको क्यों नहीं स्वीकार किया भगवान ने? क्योंकि उसमें दुर्योधन का भाव नहीं था, खिलाना नहीं चाह रहा था, दिखावा कर रहा था कि चलो कैमरा मेरा फोटो भी आ जाएगा और लोग भी समझेंगे हाँ भाई मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ दान पुण्य करता रहता हूं। तो भगवान तो भाव देखते हैं, इसलिए भगवान ने बोल दिया कि दुर्योधन दो परिस्थिति में किसी के यहां खाना खाया जाता है, या तो सामने वाले का प्रेम ऐसा है कि भाई जो है नहीं खाना ही पड़ेगा, बहुत वो कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं आपको खाना ही होगा, तो उसका प्रेम देख करके फिर क्या करते है? चलो ठीक है थोड़ा सा खा लूंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, हाँ ठीक है थोड़ा खा लो। या फिर कोई बहुत प्राण निकल रहे हैं, भूखा भी नहीं प्राण निकल रहे हैं, मान लीजिए लग रहा है कि भाई अब तो मुश्किल है, तो भी वो किसी के यहां फिर खाना खा सकता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो भगवान ने स्पष्ट किया कि दुर्योधन ना तो मैं तेरा इतना भाव देख रहा हूं कि जिसके कारण मैं पिघल जाऊं, और ना ही मेरे प्राण ऐसे निकले जा रहे हैं भूख के कारण, इसलिए मैं तेरे यहां पर भोजन नहीं कर सकता। सोचना, और वो ही भगवान क्या ना विदुर के यहां जाकर के मांग करके खाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं भगवान इसके बारे में कि भगवान की एक खासियत है, भगवान किसी के कोई चीज की जरूरत नहीं है। देवता उनको कुछ दे नहीं देते हैं और असुर उनसे कुछ लेने नहीं लेते हैं, समझ रहे ना। लेकिन बात यह है कि भगवान जो वास्तव में भक्तों से क्या करना चाहते हैं, भक्त पर आश्रित रहना पसंद करते हैं। भगवान की एक खास अहम भक्तो पराधीन ही स्वतंत्र इव दुजह साधु विग्रस्त हृदय भक्तई भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, ही स्वतंत्र इव दुजह, बिल्कुल भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जैसा मेरा भक्त बोलते हैं वैसा ही मैं कार्य करता हूं। तो इसलिए भगवान जो है जो उनको क्या बोलते हैं सुरक्षा के लिए पुकारते हैं, तो भगवान उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, और जो भगवान से युद्ध करना चाहता है भगवान उनके लिए युद्ध करने के लिए जाते हैं। अब इसमें भगवान का क्या दोष है? और दूसरी बात ये बात बता रहे हैं इसमें जो है बात दे रहे हैं कि भगवान क्या है यहां बता रहे हैं। देखो नैवा सुरेभ्यो विद्वेषु न उद्वेग अगुणस्य ही, भगवान अगुणस्य है, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, इसलिए उनमें जो है किसी प्रकार का उद्वेग है, किसी की स्तुति करने से प्रसन्न होना या किसी का अपमान करने से है और जो है क्या नाम है द्वेष करना, ये भगवान के अंदर नहीं है। आगे हम सुनेंगे जो है इसी बात को सुखदेव गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं सात किधर है ये है निर्गुणो ही अपि अजो अव्यक्तो भगवान प्रकृते पर स्वमाया गुण आविश्य बाध्य बाधकताम गतः। निर्गुणो अपि ही अजो, भगवान कैसे हैं? निर्गुण है, निर्गुण का मतलब होता है प्रकृति के तीन गुणों से, और भगवान अज है अजन्मा है, वो कभी भी इस प्रकृति के जैसे हम जन्म लेते हैं ऐसे भगवान कभी भी संसार में जन्म नहीं लेते। और अव्यक्तो भगवान है, कैसे हैं? अव्यक्त हैं, व्यक्त अव्यक्त का मतलब यहां दिए हैं अप्रकट है, भक्तों के सामने हालांकि अप्रकट है लेकिन भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। भगवान अजन्मा है लेकिन भक्तों के लिए जन्म लेते हैं, और भगवान निर्गुण है अर्थात गुणों से परे है, फिर भी भगवान इस संसार के अंदर है साधारण मनुष्य की तरह लीला भी करते हैं। इसलिए तो माता यशोदा ने भगवान को रस्सी से बांधा, कोई ना कोई तो उन्होंने गलती की ना, तभी तो बांधा भाई, नहीं तो क्यों यशोदा मैया बांधती उनको। लेकिन उसी बात को लेकर के सत्यव्रती मुनि स्तुति कर रहे हैं, उनकी रस्सी की स्तुति कर रहे हैं और पेट से बांधा इसलिए उनके पेट की स्तुति कर रहे हैं। कौन सा वो है दामोदर अष्टक का नमस्ते तु दामने स्फुर दीप्त दामने त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्राय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे अनंत स्वरूप, इस रस्सी ने आपके पेट को बांध दिया। जिस पेट के अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड भरे पड़े हुए हैं, माता यशोदा ने अपने पेट में एक बार ब्रह्मांड दिखा दिया, एक ब्रह्मांड दिखा दिया, उसी को देख करके सेंसलेस बेहोश हो गई माता। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़े हैं और उस साधारण सी रस्सी ने उनके पेट को बांध दिया, इसलिए तो उनको आश्चर्य हो रहा। भाई जिसका कोई अंत नहीं है, नमो अनंत लीलाय, नमो अनंत देवाय, मतलब उस देव को, उस परम भगवान को जो अनंत स्वरूप है, जिनका आदि नहीं, मध्य नहीं और शुरुआत नहीं। भाई बांधा किसी चीज को जब जाता है, जब उसको हम पॉइंटेड कर सकते हैं, किसी सीमा में बद्ध कर सकते, तब उसको जो है कर सकते हैं। जिसका सीमा ही नहीं है, हर जगह अनलिमिटेड है, तो उसको हम कैसे बांधेंगे? तो इसलिए तो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, भाई ये रस्सी तेरे को प्रणाम है, तूने बांध दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान अपनी माता के वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। इससे इस लीला में भगवान ने 5 रसों का आस्वादन किया है। दास्य रस का आस्वादन किया, सख्य रस का आस्वादन किया, और क्या नाम है, वात्सल्य रस का आस्वादन किया, माधुर रस का आस्वादन किया, और पहला जो कौन सा है, शांत रस का आस्वादन किया। 5 रस का इस लीला के अंदर, ऐसी लीला है, 5 रस का आस्वादन उन्होंने किया है। तो शांत रस का आस्वादन कहां किया भगवान ने? वृक्षों को तोड़ करके, जो वृक्ष थे क्या हमने, यमला अर्जुन, भगवान ने उनको तोड़ा है, उनका उद्धार किया, वहां जो है उन्होंने किया आस्वादन किया, ऐसे 5 रस का आस्वादन किया। तो ये बात जो है, हम ज्यादा उसको अब डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कहने का आशय कि भगवान अगुणस्य हैं। अगुणस्य का मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से परे होता है, वो संसार के द्वेष से, ईर्षा से, झगड़े से, मान से, अपमान से बिल्कुल परे हो जाता है। तो इसलिए मान लीजिए असुरों से वो क्यों दोष करेंगे, असुर मान लीजिए उनको गाली भी दें तो अभी उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? जैसे कोई पागल व्यक्ति, जैसे हमने बोला हरिदास ठाकुर को खूब गाली भी दिए और मान लीजिए जो भी है, मारे पीटे जो भी किए, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा उनके साथ में नहीं किया है? तो भगवान के बारे में क्या कहा जाए कि जो भगवान जो है बिल्कुल, जहां प्रकृति के तीनों गुण छू तक नहीं सकते हैं, पहुंच भी नहीं है, जैसे हीरा और क्या नाम, शीशा, इस जगत के ही वो है, लेकिन शीशा मान लीजिए हीरे शीशों में हीरा को मिला दिया जाए तो क्या हीरा शीशा बन जाता है? बिल्कुल नहीं बनता। प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे, तात्पर्य में दे रहे हैं कि इस जगत के अंदर, तथा भगवान बोल रहे हैं, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं बस, हमें आध्यात्म तथा भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो भौतिक है वो भौतिक गुणों द्वारा संतुष्ट रहता है, किंतु जो आध्यात्मिक है वो हमेशा दिव्य है और उसे गुण छू तक नहीं पाते। तो भगवान भगवान है, त्रिगुणातीत है, आनंद स्वरूप है, इसलिए प्रकृति के किसी भी ईर्षा से, द्वेष से, या स्तुति से, या किसी से भी भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए भला भगवान किसी के प्रति ईर्षा क्यों करेंगे, और भला किसी के पास मतलब पक्षपात क्यों लेंगे? भगवान नहीं लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं? जब भाव के अनुसार जो जैसे भगवान को पुकारता है, उसी प्रकार भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान स्वयं व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है ना? हम व्यवहार करते हैं पहले उनके साथ में, फिर भगवान उस प्रकार का जो है हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए यहां आज का स्पेशल जो श्लोक है, इसी बात को इंगित कर रहा है। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जो है श्रेयसात्मन का, निःश्रेयसात्मन है, अर्थात परमानंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, इसलिए वो देवताओं का क्यों जो है पक्षपात करते हैं? और दूसरा जो है अगुणस्य है, भगवान में तो कोई प्रकृति के गुण नहीं है जिससे उनको रजोगुण में आकर के हम जो है क्या नाम है ईर्षा द्वेष करें, तमोगुण में आकर के किसी का अहित कर दें, या सतोगुण में आकर के किसी की प्रशंसा सुने, तो वो भी भगवान में नहीं हो, तो बिल्कुल परे हैं। तो इसलिए भगवान जो है इन तीनों गुणों से परे होकर के फिर क्यों असुरों का वध करते हैं, ये उनसे द्वेष करते हैं। आगे की चर्चा को हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा।